Hello, amazing folks. Welcome to another interesting and inspiring episode of the podcast show, Triva Talks. I'm your host, Tarun Mundra, and in this episode, we are going to talk about a powerful tool for effective communication, which is storytelling. Storytelling is the most powerful way to put ideas into the world today, and it is very important to understand the art of storytelling. And to discuss about this topic, we have one of the experts from this field, who is none other than Miss Vanika Sangtani. Vanika is a famous storyteller. You must have seen a video on YouTube, videos like Sanskari Girl, Imperfect Ho Tum Bhi, Papa Ko Nahi Batana, and many other are some of the famous videos of her. She is also a social activist, a travel blogger, and a writer. In this episode of Trivia Talks, we are going to talk about her journey from starting an NGO at 16 towards her journey as a storyteller. She is also going to share some amazing tips and tricks about storytelling, and the entire conversation is going to be very informative and interactive. So without any further ado, let's start this amazing discussion with Miss Vanika Sangtani. Let's go. Hi Vanika, welcome to Trivia Talks. It's an honor and it feels amazing to have you on the show. Thank you so much for taking out time and joining this podcast.
I am so happy. Thank you so much, Tarun, for having me here. I'm really excited to see how this conversation will go ahead.
Glad to hear that. And we are going to discuss about some amazing and, you know, interesting story of yours. But before that, I would like to convey one message which I've received from many of my friends when I informed that, you know, I'm going to interview Vanika. And they were like, you know, please inform her that we love the Sanskari Girl video. And it's amazing how she, you know, kept those thoughts, because, you know, the society is getting judgmental. And aapne jis hisab se us video mein rakha hai na, the way you explain and the way you convey the message is just amazing. And it's connecting with people so much. And congratulations for 1.6 million views. And it's, we are still counting that. So, yeah.
I am so happy that people understood what I was trying to say. For when it comes to me, I think I was, I just conveyed my feelings and it wasn't that difficult. It was difficult, but it wasn't that difficult. But I'm so, so, so glad that people received it well.
Yeah, it's just amazing. So beginning with this particular conversation of ours, many of my listeners know you, but for those who are listening to you for the first time, it would be great if you can give a bit of backstory of yours from starting your NGO to, you know, storytelling journey. So yeah, a brief journey of yours.
For those who do not know me, I'm Vanika, and I am a potential, I am basically an overdoer. So when I was in 9th grade, I started my own NGO, and it's been a few years of my NGO impacting lives all over India now. Along with that, I also started my storytelling journey in 2018, where I started writing and reciting stories in front of people. And I'm so, 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 so happy that now you can find my videos on YouTube, where I talk about all of these stories. I talk about contemporary issues. I talk about feelings. I talk about emotions. I talk about everything that you and me feel through my stories on YouTube. So I'm really, really happy. Along with that, I'm also a travel vlogger. It's not a vlogger. I'm basically a travel host, and I have started my own travel show in 2021, which is called The Travel Teller, wherein I am going to travel the world in search of stories because I love stories so much.
Oh, wow. So you started this NGO of yours when you were 16, right?
Yes, I did.
Yeah. So what was the idea behind starting the NGO at the age of 16? Because I think, like, you know, many of them have gave the same kind of reaction to you. Like, why NGO at such a young age?
I would say that I was a very selfish person when I started my own NGO. I basically wanted free space for a YouTube video that I was trying to shoot. I always thought that I did not get the right platform for my art since the beginning. So in school, I used to write, I used to sing, I used to do different things. But somewhere or the other, I always thought that there was lack of platform when it came to expressing my art. And that is why I wanted to start something on YouTube. I wanted to create a platform for myself and I wanted free space. And I thought shooting at an NGO, talking about art at an NGO would be a feasible option. Because I had read some story of some people who conducted different events in NGOs for free. So I just saw that free word. I just thought that I'll get free space. And I decided to shoot my first video at an NGO. But that day when we were talking about art in that NGO, I realized that the kids who were there, they did not care about the platform they were on. They were just expressing through their art. And that is why they were so happy, and the satisfaction and the happiness that they got through expressing through their art was something that I had never felt. And from that day, I understood that art is not about the platform. Art is about how you own it, how you express through it, irrespective of the platform you are on. So I just wanted, whatever I felt that day in that NGO, I wanted to recreate experiences like that again and again in my life. So I thought I would start, like you may call it an NGO, you may call it a community organization, whatever it was. I just wanted to start something that would help me recreate experiences like those in different places all throughout the year, because I wanted to experience it more often. It was very difficult at that point in time to start that, to actually make my family understand about what I was doing, to get people become a part of what I was trying to do, because I knew I couldn't do it alone. So it was very difficult, but I feel sometimes in life when you're doing something that you love, You find ways on your own. There is nobody who tells you how to find it. Or maybe you'll get some guiding force. But when you do something that you love, there is no coming back from there. So, yeah, that is how the entire thing started. And I think I got very lucky that I got the right people. I got the right family support. I understood the thing very nicely. And that is how the night started. And it has been a beautiful journey since then. Of course, there have been ups and downs, highs and lows and all of it. There were times when I actually stopped doing Denied because of certain reasons. I have had the worst experiences with Denied as well. But what matters is that I love the concept of Denied. It's about my happiness. I'm not helping someone. And I tell my team also to not help someone. I tell my team that you are not going to do something else, something for someone else. You are basically doing something for yourself. You're just finding your happiness through the smiles of someone else. So I feel when you work on your own happiness, there is no coming back from there. You find ways. You get opportunities. You find support. You just need to have that faith and that belief, and apne aap rasta ban jata hai.
Wow, that's so inspiring, and I'm very curious to understand, like, why Denied? Like, why did you choose this name Denied, and what is the story behind it?
So basically aisa koi story nahi hai, but I have always felt that people usually think that I'm 5 feet, okay, I'm very short, and people usually think that this is a problem. Sometimes in life, I do feel that this is a problem. But there are so many times in my life when I feel that this is actually an advantage. When I'm talking to kids, since I don't look like a mature adult, they connect to me very easily. When I'm talking to mothers and grandmothers in one of the programs by Denied, they connect to me thinking that I am someone younger. I am someone who is of their daughter's age. So that particular aspect of my life wherein I am short, I do not look of my age. That is something that is a problem according to people in my life. But my perspective to something that happens to me, or my perspective to what I have, changes the entire outcome of that particular thing from my life. अगर मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ है तो सही, पर ये अच्छी है, तो उसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं. अगर मैं ये सोचती हूँ कि कोई चीज़ बुरी है, तो फिर उसके नेगेटिव्स हम लोगों को मिलते हैं. सो चीज़ें हमारे साथ बहुत सारी होती हैं. हम अगर बुरे एक्सपीरियंसेस से सीखें, तो हमारी लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं. तो डिनाइड का कॉन्सेप्ट ये था कि अ लॉट ऑफ पीपल आर डिनाइड इन द सोसाइटी, फ्रॉम पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज टू विमेन टू चिल्ड्रेन. ऑल ऑफ दीज पीपल आर मार्जिनलाइज्ड एंड दे आर डिनाइड ऑफ इक्वालिटी. बट जस्ट बिकॉज दे आर डिनाइड, दैट इज वाई दे हैव द स्पार्क टू ब्रिंग अ चेंज इन देयर लाइफ्स. बोलते हैं ना, जो इंसान प्रिविलेज नहीं है वो ज़्यादा मेहनत करता है, और उसकी लाइफ में वो आगे बढ़ता है ज़्यादा, उसको उसकी कीमत ज़्यादा होती है, उसकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं. तो जस्ट बिकॉज लाइफ हैज़ टेकन समथिंग फ्रॉम यू, जस्ट बिकॉज यू आर डिनाइड ऑफ समथिंग इन द बिगिनिंग, दैट डिनाइल हैज़ द पावर टू चेंज योर लाइफ.
Wow, and that's so deep actually, because you know, deep as well as motivating. Because the idea behind understanding this entire concept, if it's very clear that you are having this like perfect vision, the reason behind you are starting this NGO, and each and every aspect of it is explained in just one word, which is denied. So
Exactly.
yeah, that's an amazing story behind it, and it's actually the realistic scenario of it. So when you're starting something like this, something big like this at such a young age, we face a lots and lots of challenges. So it would be great if you can highlight to, you know, two to three challenges which you faced and you think that, you know, it should be known to others also who are trying to do something big, but they are getting pulled by the society.
So I feel देर इज नो वन वे टू डील विथ चैलेंजेस. जो चैलेंजेस मैं तब फेस करती थी, कहीं ना कहीं मैं आज भी फेस करती हूँ. तो वो चैलेंजेस तो आते रहते हैं, पर हमें उस हिसाब से अपना रास्ता थोड़ा बदलना पड़ता है. वैन आई स्टार्टेड इट, आई फेस्ड अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन ब्रिंगिंग पीपल ऑन बोर्ड. एज आई सेड, आई न्यू आई कुडंट डू इट अलोन, आई नीडेड पीपल. एंड एज अ बिगनर, ओनली अ फ्यू पीपल ट्रस्ट यू, दे डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू डू. तुम्हारी तरफ से भी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो इनिशियली इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ब्रिंग पीपल ऑन बोर्ड. मैंने 3 दिन का इवेंट रखा था 3 अलग अलग NGOs में, और लोग नहीं आ रहे थे. मेरी टीम काफ़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे थे. हमें चाहिए थे अराउंड 20-25 वॉलंटियर्स, और 10 लोगों ने हाँ किया था. तो दैट वॉज वेरी डीमोटिवेटिंग. वैन यू डोंट हैव सपोर्ट, दैट इज़ वेरी डीमोटिवेटिंग. तब मैंने बोला कि चलो ठीक है, जितने लोग आ रहे हैं हम उन्हीं के साथ काम करेंगे. हमने पहले दिन सारे लोग आए, हमने उस इवेंट में 15-20 जनों ने ही, 15-16 लोग थे हम सब ने. मम्मी मैं अपने घर से मम्मी और दादी और इन सबको ले गई थी. हम लोगों ने वहाँ पे इवेंट किया, काफ़ी अच्छा इवेंट हुआ. और उस दिन मैंने सबको बोला कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आप अपने सोशल मीडिया पे डाल दो, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी है आपके पास, आप उस पे डाल दो. अगले दिन मैं उसी दिन जब मैं रास्ते पे जा रही थी ना, तो मुझे इतने सारे कॉल्स आए, बिकॉज पीपल सॉ व्हाट वी वर डूइंग. उन्हें दिख रहा था कि हम क्या कर रहे हैं. बच्चे स्माइल कर रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं. एंड दैट इज़ व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली सेड नो बिफोर, उन लोगों ने कॉल किया और कहा कि उन्हें अगले दिन आना है. वी स्टार्टेड विद 16-17 पीपल, अगले दिन 35 लोग थे, और तीसरे दिन तो आप मानोगे नहीं, देर वर 50-55-60 पीपल हु वांटेड टू कम.
Wow.
सो यू नो, द फर्स्ट डे व्हेन आई जस्ट आई हैड 8-9 वॉलंटियर्स, और मुझे अपने घर वालों को ले जाना पड़ा था वॉलंटियर करवाने के लिए. दैट वॉज वेरी डीमोटिवेटिंग. उसके बाद भी लोगों को ट्रस्ट करवाना, उनका ट्रस्ट रिटेन करना, बिकॉज व्हेन यू आर अ बिगनर, जब तुम शुरू करते हो तुम गलतियां करते हो, है ना. तुम गिरते हो रास्ते पे, तुम्हें पता नहीं होता कि तुम क्या कहने हो, तुम्हें पता नहीं है सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं, तो तुम गलतियां करते हो. पर पर जब तुम एक टीम में काम करते हो ना, तो वो गलतियां गलतियों की वजह से तुम नहीं गिरते हो, 10 लोग साथ में गिरते हैं। और जब 10 लोग गिरते हैं ना, तो वो अगली बार उठ के तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो वो प्रॉब्लम होती थी, बट आई न्यू वन फॉर वन लाइक वन थिंग कि दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। आज एक इंसान ट्रस्ट करेगा, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, और चौथा फिर करता ही जाएगा। सो हमें पहले के ट्रस्ट पे रुकना नहीं है, हमें सीखना है उससे। हम पहली बार गिरेंगे, सीखेंगे, हो सकता है 2 लोग टीम से हट जाएं या 2 नए जुड़ जाएं, जैसा भी होगा मुझे ये जर्नी को कंप्लीट करना है, मुझे वो पूरा प्रोसेस सीखना है। तो पहला चैलेंज तो ये था कि खुद का मोटिवेशन मेंटेन करना था, लोगों का ट्रस्ट रिटेन करना था। दूसरा ये था कि फैमिली को मनाना था। बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपकी फैमिली कैसे, क्या सब कुछ। मैंने अपने एनजीओ की शुरुआत में ही अपनी फैमिली को एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बना लिया, मैं जो भी कर रही थी उसका। आई यूज टू जब भी मुझे कुछ खरीदना था या फिर जो भी करना था, मैं उनके साथ जाती थी। हाँ, मुझे बहुत डांट पड़ती थी। मेरी मम्मी ने पहली बार जब ये आइडिया सुना था, जब सुना था कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, मुझे मना कर दिया था। पर मुझे पता था ये करना है। तो पेरेंट्स क्या होता है ना, या फैमिली क्या होती है ना, एक बार के बाद ना बच्चों की इज्जत पे मान ही जाते हैं। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत सही है, और वो जिद तुम पूरी भी कर सकते हो खुद से। तो खुद पे फेथ होना बहुत जरूरी है। कोई भी चैलेंज आए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस लिए कर रहे हो, और तुम्हें उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा है, फेथ है, क्लैरिटी है, अपने आप रास्ता आएगा, अपने आप ये चैलेंजेस से निकलने की तुम्हारे पास हिम्मत भी आएगी, स्ट्रेंथ भी आएगी, समझ भी आएगी।
दैट्स इंस्पायरिंग एक्चुअली वनिका. एंड इफ आई आस्क यू लाइक हु इज़ योर कॉन्स्टेंट इंस्पिरेशन, बिकॉज यू नो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं ना जिसमें सोसाइटी भी पूरी तरीके से सपोर्टिंग लाइक नहीं है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग एंड यू आर गेटिंग अ कॉन्स्टेंट मोटिवेशन, सो हु इज़ योर इंस्पिरेशन?
आई थिंक सो इफ आई हैव टू टेल यू अ पर्सन हु इंस्पायर्स मी, आई थिंक इट्स माई मासी। शी इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ माई लाइफ। मतलब उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है, एवरी टाइम, एवरी एवरी टाइम ऑफ माई लाइफ, वट एवर आई एम डूइंग इज बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ हर सपोर्ट, हर ट्रस्ट इन मी। बिकॉज मेरे पेरेंट्स कहते हैं, अगर मासी मान जाएगी तो हम भेज देंगे, अगर मासी मान जाएगी तो कर ले। एंड शी हैज़ ऑलवेज अंडरस्टूड मी, एंड शी हैज़ ऑलवेज टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड टू सी वॉट आई एम डूइंग, एंड जस्ट बिलीव मी इन वॉट एवर आई एम डूइंग। सो हर एंड इफ आई हैव टू टॉक आई हैव टू टॉक अबाउट कॉन्स्टेंट इंस्पिरेशन, आई थिंक इट्स माई एक्सपीरियंसिस। मैंने 16 साल की उम्र में जब चालू किया, आज आई एम 21, इसके बीच में और इससे पहले भी मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं, बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें। और मेरा ये मानना है कि हर इंसान के साथ तुम्हारी एक कहानी होती है, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत किस्से होते हैं, और हर किस्से से तुम कुछ ना कुछ सीखते हो। सो यू लुक बैक टू दोज एक्सपीरियंसेस। जब मैं थोड़ा लो फील करती हूँ ना, तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, मुझे क्या आता था, और आज मुझे क्या आता है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उस टाइम खुद पे भरोसा किया था, और आज भी मुझे खुद पे भरोसे करने की ज़रूरत है। सो आई बेसिकली गेट इंस्पायर फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसिस। वो लोगों के साथ होते हैं, चीज़ों के साथ होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है, फ्रॉम नसीर चाचा जो मेरी साइकिल बनाते थे, टू देयर वाज दिस ड्राइवर हु वंस आस्क्ड मी व्हाई आई वाज क्राइंग इन ऑटो, टू समबडी हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन मरीन ड्राइव, एंड मैंने उनसे 2-3 घंटा बात किया और उनका नाम नहीं जाना। सो ऑल ऑफ दीज रैंडम स्ट्रेंजर्स एंड ऑल ऑफ द पीपल दैट आई नो, उनके साथ जो छोटे छोटे किस्से हैं ना, व्हेन यू लुक बैक एट दोज ऑन दोज एक्सपीरियंसेस, यू रियलाइज दैट यू आर वेरी स्पेशल। और ये हर किसी के साथ होते हैं। बस हम ना जिंदगी की इन छोटे छोटी चीज़ों को ना एक्सपीरियंस करना, उनकी वैल्यू करना, उनको लुक बैक करना, और उनको उनसे सीखना और उनसे इंस्पिरेशन लेना भूल जाते हैं। मुझसे कई लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारी लाइफ में तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं यार, तुम्हारी लाइफ में ऐसे किस्से क्यों होते हैं? मैं ये कहती हूँ हर इंसान की लाइफ में वैसे किस्से हैं, बस वो देखना भूल जाते हैं।
बट द बेस्ट पार्ट इज़ यू नो कि आप ये जो एक्सपीरियंसेस है और ये स्टोरीज जो है, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, यू ट्राई टू कंबाइन एवरी थिंग एंड यू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर थिंग टू द ऑडियंस, राइट? एंड यू लाइक मेक देम रिलेट टू इट. सो एंड यू यूज द मोस्ट पावरफुल टूल विच इज स्टोरी टेलिंग, बिकॉज यू नो स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट पावरफुल वे टू पुट आइडियाज इन टू द वर्ल्ड टूडे. एंड कुछ भी हो, वेदर यू आर एंटरप्रेन्योर, मार्केटिंग में हो या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो, you need this particular skill of storytelling, and I think you have decoded that particular, you know, skill of it. So aapko pata hai ki how to put and how to connect with people with the help of storytelling. So I'm definitely going to talk about it and how your journey as a storyteller started. You like definitely shared that, you know, started your journey as a storyteller at the age in 2018, I think. So and how it escalated, because I think it actually requires a constant practice also. So how you put things in front of the public, and after getting response from them, how you try to improve for your next event or next session?
So nobody thinks that they'll be like a poet, nobody thinks that they'll be a musician when they grow up. We always dream of becoming doctor, engineer, all of these things because of how the society functions, how we are brought up during our childhood. But we don't realize that there are these things that we are meant to do, and we do it unknowingly all throughout our life. So I think I did storytelling. I have been doing storytelling since I was a kid, from sitting with kids in my neighborhood and telling them about different stories from school, to the lunch breaks in school when I used to sit in the circle surrounded by a lot of people, and I just used to make beliefs, to like tell them make believe stories and do different things. So I always used to do this, but I never thought this could be something that I'll do for so many people. And I did not even know that storytelling existed. So in 2018, I was going to Bombay for my college, and I had decided to take up this course called Bachelor's of Management Studies. And thoda life ka life mein thoda problem ho gaya, thodi cheeze plan ke according nahi gayi, aur galti se na mujhe Bachelor's of Management Studies ki jagah Bachelor's of Mass Media mil gaya. तो जो पूरा लाइफ सोच रखा था ना, मतलब जिस तरीके से एक रास्ता ढूंढ रखा था, वो एकदम डाइवर्ट हो गई उससे, एंड आई वाज ऑन अ कम्प्लीटली अननोन पाथ. आई वाज नोन दैट मुझे पता था कि मुझे बचपन से ही मास कम्युनिकेशन करना था, बट पता नहीं क्यों मैंने उसको छोड़ दिया, एंड आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन इट, एंड आई हैड प्लान्ड अ डिफरेंट रूट फॉर माई लाइफ. बट भगवान हमें उसी रास्ते पर पहुँचा देते हैं जहाँ पे हमें होना होता है. So I was on Bachelor's of Mass Media. I got into Bachelor's of Mass Media, and I had no idea what I would do because my entire plan completely failed. तो जैसा कि हर इंसान होता है, और मैं ये हर जगह बोलती हूँ कि जैसा कि हर इंडियन होता है, वो अपना मोटिवेशन YouTube पे ढूंढता है. तो मैंने भी उस टाइम पे अपना मोटिवेशन YouTube पे ढूंढा, और तब मुझे टेप पटेल के बारे में पता चला. एक स्टोरी थी चेज योर ड्रीम्स, जो कोपल खन्ना ने लिखी है, एंड इट वॉज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. एंड दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई फर्स्ट हर्ड हर, एंड आई वॉज लाइक व्हाट शी इज डूइंग इज ब्यूटिफुल. और मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया. थोड़े दिनों बाद जब मैं बॉम्बे गई, एक डेढ़ महीने बाद, तब उनका एक शो था सेप्टेम्बर 9th of September को, और मैंने देखा कि वो लोग दे आर आस्किंग फॉर स्टोरीज. मुझे नहीं पता था स्टोरीज कैसे लिखते हैं, कैसे भेजते हैं, कुछ आइडिया नहीं था. पर मैंने कहा यार भेज के देखते हैं ना, कुछ 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 लिखा हुआ था मेरे पास, इट वाज लाइक अ प्रोज. तो मैंने वो सेंड कर दिया उन्हें. दो दिन बाद उनका रिप्लाई आया कि सॉरी, दिस स्टोरी इज नॉट सिलेक्टेड बिकॉज दिस इज नॉट इन दिस फॉर्मेट, दिस इज नॉट अ स्टोरी, ये प्रोज है. आप स्टोरी लिख कर भेजते तो हम फिर भी सोचते. And that was the happiest day of my life. Rejection mila tha, but I was happy to get that rejection because I was so happy to see that this a page as big as Tay Patel replies people on email. दैट वॉज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेटिंग. तो मैंने उनसे पूछा कि भाई स्टोरी कैसे लिखते हैं फिर, तो उन्होंने मुझे बताया कि स्टोरीज आर रिटन इन अ बिगनिंग एंड मिड, बिगनिंग मिडिल एंड फॉर्मेट, पर्सनल रियल लाइफ स्टोरी होनी चाहिए, ऐसा वैसा होना चाहिए, आप भेज दो. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. आफ्टर सम डेज मैंने वो स्टोरी को थोड़ा स्टोरी वे में लिखा और मैंने उन्हें भेज दिया. अब मेरी किस्मत कह लो कि उनके पास कम स्टोरीज थी, जो भी था मेरी स्टोरी सिलेक्ट हो गई और मैंने उस दिन पहली बार परफॉर्म किया. एंड व्हेन आई वाज लुकिंग एट द परफॉर्मर्स लिस्ट आई सॉ दैट अलोंग विद मी हेली शाह वाज परफॉर्मिंग, कृष्णा अय्यर वाज परफॉर्मिंग, अभया
वाओ
मिश्रा वाज परफॉर्मिंग. एंड दीज आर बिग पीपल इन द स्टोरी टेलिंग फील्ड, दे आर वेरी अमेजिंग एट व्हाट दे डू. सो आई वाज वेरी नर्वस, बट मैं वहाँ पे गई और मेरा कोपल खन्ना ने पहला परफॉर्मेंस रखा था. मैं परफॉर्म कर रही थी एंड एवरीबडी वाज स्माइलिंग इन द बिगनिंग, पर धीरे 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 करके वो स्माइल कम हो गई. फिर भी अच्छा हुआ परफॉर्मेंस, आई वाज रियली हैप्पी विथ व्हाट आई डिड. बट आफ्टर मी हेली वेंट, देन कृष्णा सर वेंट एंड ऑल ऑफ दीज पीपल वेंट, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि शिट यार, आई वाज नोवेयर क्लोज टू व्हाट दे डू, आई वॉज नोवेयर क्लोज टू वॉट पीपल से स्टोरी टेलिंग इज. तो उस दिन बस एक सपना सा बन गया कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी गुड एट दिस आर्ट, आई वॉन्ट टू लर्न दिस आर्ट एंड आई वॉन्ट टू परफॉर्म लाइक दीज पीपल. तो मैंने यूट्यूब पर वीडियोज देखना शुरू किया, अमनदीप, याया, कृष्णा मैम, एवरीबडी. आई यूज टू सी सो मैनी वीडियोज, सो मैनी. और मैं अगले बार भी मैंने अपना स्टोरी भेजा, मैं सिलेक्ट हुई पर बहुत मुश्किल से सिलेक्ट हुई. परफॉर्म किया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ. उस टाइम पे मेरा हॉस्टल का टाइमिंग होता था 10 बजे और परफॉर्मेंस 9, 9:30, 10 बजे होती थी. मैं अपना हॉस्टल मिस करके, लाइक हॉस्टल टाइमिंग क्रॉस करके मैं वहाँ पे जाती थी. देन आई यूज टू स्टे एट अ फ्रेंड्स हाउस और मरीन्स. आई लाइक दोज डेज वर वेरी वेरी मेमोरेबल. पर फिर उसके बाद एक टाइम बाद मेरी स्टोरी सिलेक्ट होना बंद हो गई एंड आई यूज टू सेंड स्टोरीज एवरी टाइम बट आई वॉज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. तो मैंने मैंने फिर भी लिखना छोड़ दिया, मैं उस टाइम के बाद नहीं लिखी. फिर एक दिन ना जयपुर में एक शो था, टेप पटेल वॉज डूइंग लाइक अ टूअर विद अमनदीप खयाल, और टेप पटेल का एक शो था जब मैं जब जयपुर आ रहे थे, और मैं भी जयपुर से हूँ तो मैं भी जयपुर आ रही थी दिवाली ब्रेक के लिए. तो मैंने डिसाइड किया कि जयपुर आ रही हूँ तो मैं जयपुर के बारे में एक कहानी लिखूंगी, तो शायद ये लोग मुझे सिलेक्ट कर ले. तो मैंने स्टोरी लिखी, स्टोरी अच्छी थी पर जिस तरीके से लिखी गई थी वो अच्छा नहीं था. तो मुझे कोपल ने बहुत सारे चेंजेस बताए, फिर उसने मुझे बोला कि ऑडियो भेजो. उसने करीबन मुझसे 80 to 90 ऑडियोज मैंने रिकॉर्ड किए होंगे उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सेंड दैट वन परफेक्ट ऑडियो टू कोपिल खन्ना जिसको वो देख कर मुझे सिलेक्ट ही कर ले.
80 to 90 ऑडियोज,
80 to 90 ऑडियोज एंड
ओ
आई
माय
स्टिल
गॉड.
हैव ऑल ऑफ इट, आई स्टिल हैव ऑल ऑफ इट. आई वॉज वर्किंग रियली हार्ड. और फिर उसने मेरा सिलेक्शन हो गया जयपुर वाले प्रोग्राम के लिए, और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप भी चलना. पहली बार आई वॉज टेकिंग माई मदर अलॉन्ग इन जयपुर फॉर माई स्टोरी टेलिंग शो, आई वॉज वेरी हैप्पी. और कोपल ने मुझे बोला कि 6 मिनट से पहले ही करना, ऐसे करना वैसे करना, एंड आई वाज लाइक ओके परफेक्ट. मैं स्टेज पे गई और मैं भूल गई,
ओह माय गॉड.
और मम्मी बैठी है तीसरी रो में, उधर कोपल देख रही है, और मुझे बहुत मुश्किल से मौका मिला है. आई वॉज ऑन स्टेज, आई वॉज नर्वस, आई वॉन्टेड टू क्राई एट दैट पॉइंट इन टाइम क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था. पर फिर मैंने सोचा कि अब मुझे परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा यार, तो मैंने परफॉर्म किया. मुझे स्टोरी पता थी क्योंकि मेरे साथ ही हुई थी, तो मुझे स्टोरी पता थी मुझे क्या बोलनी है, मुझे पता था मुझे कैसे बोलना है, और मैंने बस परफॉर्म किया. उस दिन मैंने ऐसे बताया जैसे मैं अपने एक फ्रेंड को बता रही हूँ, नॉर्मल माई स्टाइल, नो राइमिंग वर्ड्स, नो पॉजेज, नो ब्यूटिफुल वर्ड्स. जो जो मैंने सीखा था ना मैंने सब छोड़ दिया और मैंने मेरे तरीके से परफॉर्म किया. एंड दैट वॉज द डे वेन अमनदीप खयाल वॉज क्लैपिंग स्नैपिंग इन द ऑडियंस. मुझे घर जाते ही इतने सारे लोगों के DM आए ये कह के कि मेरी स्टोरी बहुत अच्छी थी. एंड दिस हैड नेवर हैपेंड विद मी इन माई इंटायर लाइफ एंड आई वॉज सो मोटिवेटेड. उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि वेन आई सॉ हेली इन माई फर्स्ट परफॉर्मेंस, वेन आई सॉ कृष्णा सर इन माई फर्स्ट परफॉर्मेंस, मैं उनकी तरह बनने की कोशिश कर रही थी जबकि आई हैड माई ओन स्टाइल. अगर हो जाऊंगी मैं उनकी तरह तो रहेगा नहीं कोई मेरी तरह, ये मैंने तब लिखा था. एंड द आइडिया इज वेरी क्लियर कि जब तुम किसी से इंस्पायर होते हो ना, तो कई के बार तुम उस इंस्पिरेशन को एक सेट फॉर्मेट बना देते हो कि अगर तुम्हें उनकी तरह ग्रो करना है तो तुम्हें उन्हीं की तरह करना पड़ेगा, जबकि ये नहीं है. वो आगे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं की. सो फाइंड योर ओन स्टाइल. और वो मैंने उस टाइम पे अपना स्टाइल पता कर लिया, पर फिर भी उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया. 1-1.5 साल तक मैंने परफॉर्म नहीं किया. काफ़ी मैं देखती थी स्टोरी टेलिंग शोज, मैं देखती थी वीडियोज़, आई यूज़ टू राइट अ लॉट, बट मैंने परफॉर्म नहीं कर पा रही, मैं कर ही नहीं पा रही थी बिकॉज आई गॉट वेरी अंडर कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज, वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. बट देन देर वॉज दिस वन टाइम आई बट ऑल दिस वाइल इन माई एनजीओ आई यूज टू टेल स्टोरीज टू माई किड्स. मतलब मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ ना, आज भी मैं कहानियों के थ्रू ही पढ़ाती हूँ. तो दैट प्रैक्टिस वॉज गोइंग ऑन. फिर एक दिन टेपटेल में एक जॉब ओपनिंग आई थी और उनको 1 महीने के लिए एक इंटर्न चाहिए था जो स्टोरी सिलेक्ट करने में हेल्प कराए. उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए वो करना क्योंकि कॉलेज चल रहा था, पर 1 महीने के लिए अपनी कॉलेज की अटेंडेंस से थोड़ा मैसअप करके मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की. बहुत मेहनत की, बड़ा मुश्किल होता था वहाँ पे जाना, पर वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला कि स्टोरीज लिखते कैसे हैं, काम क्या होता है, सब कुछ. और फिर मैंने अपनी पहली स्टोरी, मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी थी, इम्परफेक्ट हो तुम भी, रोते रोते लिखी थी मरीन ड्राइव पे. वो मैंने कोपल को पढ़ाई और कोपल को अच्छी लगी वो, और मैंने वो परफॉर्म की. अब कोपल ने मुझे बोला था 6 मिनट के अंदर अंदर परफॉर्म करना, पर मैं तो इमोशनल हो गई थी स्टेज पे जैसी मैं होती हूँ हमेशा, तो वो 7-7.5 मिनट पे चली गई. तो जब अगले दिन कोपल ने स्टोरी देखी तो कोपल ने कहा, यार बनेगा, हम लोग सोच रहे थे यूट्यूब पे डाल देते. तो मैंने कहा शिट, मैं हर बार इमोशनल की हो जाती हूँ. सो आई वॉज ऑलवेज लाइक कि यार शिट, यार मेरा एक छोटा सा सपना था कि मुझे टेपटेल पे एक वीडियो डलवाना है, बिकॉज दैट इज वॉट आई स्टार्टेड विथ. वो मुझे करना था और ये मौका मिला था और वो रह गया. पर मैं खुश थी क्योंकि वो एक बहुत पर्सनल वीडियो थी और मुझे लग रहा था कि जिस इंसान के बारे में वो स्टोरी थी वो हर्ट हो जाएगा. तो आई वॉज ठीक है, आई वॉज लाइक ओके नो वरीज, नहीं डली तो नहीं डली. फिर उसके बाद उनका एक कॉम्पिटिशन आया स्टेलर ऑफ द ईयर करके, और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया. मैं एक राउंड क्लियर की, पर मैं सिटी राउंड में आई लॉस्ट इट. पर मेरी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी तो उस टाइम पे कोपल ने मुझे बोला, मैसेज किया थोड़े दिन बाद कि वो लोग मेरी स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं. इट वॉज 2020 एंड आई वॉज वेरी हैप्पी फेब में कि मेरी मार्च में स्टोरी रिकॉर्ड हो रही है. वेरी 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 हैप्पी, मतलब बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. पर फिर फेब के एंड पे मुझे एक मैसेज आता है, हाय वनिका, वी आर रिलीजिंग योर स्टोरी टुमारो. एंड आई वॉज लाइक वेट अ मिनट, विच स्टोरी? मैंने तो कोई स्टोरी परफॉर्म ही नहीं की, अभी तो रिकॉर्ड होगी 5 तारीख को, ये तो अभी बोल रहे हैं. एंड दैट इज वैन दे सेट कि इम्परफेक्ट हो तुम भी रिलीज कर रहे हैं, जो स्टोरी मैंने रो रो के परफॉर्म की थी. एंड आई वॉज लाइक शिट,
वाह
अब मुझे इस इंसान को बताना पड़ेगा कि मैंने वो स्टोरी. फिर मैंने बहुत, मैंने फ़ोन रखा, मैंने उसे कॉल किया, मैंने उसे समझाया, बहुत सारी चीज़ें हुई. ही वॉज वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. नहीं तो मैं उस टाइम पे शायद मना भी कर देती हूँ स्टोरी के लिए. पर मेरी स्टोरी अगले दिन रिलीज हुई एंड द अमाउंट ऑफ लव पीपल शोड ऑन दैट वीडियो, ओ माई गॉड, आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड. इट क्रॉस्ड लाइक 1 लाख व्यूज इन 4 डेज, और फिर अभी इट हैज क्रॉस्ड लाइक 11 लाख व्यूज और समथिंग. बट आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड. फिर मैंने उसके साथ साथ एक दूसरी स्टोरी भी रिकॉर्ड की थी जो 5 तारीख को करनी थी मुझे, पापा को नहीं बताना, विच हैज क्रॉस्ड लाइक 2 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब. एंड देन आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी 2 वीडियोज इस साल आ गई, मेरा सपना पूरा हो गया. बट देन एंड आई डिड नॉट सी एनी फ्यूचर इन स्टोरी टेलिंग. इट वॉज लाइक अ ड्रीम जो पक्का हो, पूरा हो गया. बट देन आई डोंट नो वाई, आई जस्ट गॉट वेरी अटैच टू दी आइडिया ऑफ राइटिंग स्टोरीज एंड कम्युनिकेटिंग विद पीपल थ्रू माई स्टोरीज. मैंने एक स्टोरी लिखी, दो स्टोरी लिखी, भेजी, रिकॉर्ड की, 2020 लोगों के लिए बहुत बुरा साल रहा है, पर अगर मैं वनिका द स्टोरी टेलर की बात करूं तो मेरी जर्नी 2020 में शुरू हुई और उसने एस्केलेट भी 2020 में ही किया बहुत ही अच्छे तरीके से. फ्रॉम हैविंग लाइक 100K व्यूज इन 4 days टू हैविंग लाइक 16 मिलियन व्यूज एज यू सेड और इन लाइक 1-1.5 months.
That's
तो
inspiring actually, you know. And अब मैं अगर आपसे पूछूं कि like what was your lockdown activity? Because you were telling that you know 2020 was best year for you in terms of storytelling, right? So that moment of lockdown was completely frozen for everyone, right? सब वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी ढूंढ रहे थे जो उनको एक प्रोडक्टिव फेज में भी रखे और ऑन द सेम साइड वो अपने आप को सेफ भी रखे. सो हाउ यू वेर एस्केलेटिंग इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एज ए स्टोरी टेलर, सो आपकी एक्टिविटीज क्या रहती थी?
अब मेरी एक्टिविटीज ये रहती थी कि जब भी मेरे पास थॉट आता था मैं कहानी लिख देती थी और मैं उस कहानी को लिखती थी, उसको अच्छे से परफॉर्म करती थी आसपास, तो अपने फ्रेंड्स को सुनाती थी सबसे पहले. सो आई वाज कंटिन्यूअसली राइटिंग स्टोरीज. देन आई यूज टू सेंड इन माई स्टोरीज टू डिफरेंट पीपल, गेट रिव्यूज फ्रॉम देम, परफॉर्म इट टू माई फ्रेंड्स, और फिर मैं टेप रिकॉर्डर को भेजती थी एंड आई रिकॉर्डेड अ फ्यू स्टोरीज विद दैम. मेरी अभी 8-9 वीडियोज़ आ चुकी हैं आई गेस. तो ये सारा लॉकडाउन फेज में ही हुआ. मेरे लिए लॉकडाउन वॉज नॉट अ ब्रेक, आई वॉज द मोस्ट, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी लॉकडाउन में. आई स्टार्टेड माई ओन प्रोग्राम विच इज़ लाइक अ स्टार्टअप इन डिनाइड कॉल्ड एजेड डॉट डिनाइड, विच इज़ लाइक अ वर्कशॉप ऑनलाइन स्कूल फॉर मदर्स, फादर्स, ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स. तो आई यूज टू टेक ऑल ऑफ दीज क्लासेस 24/7, वर्क विद वॉलंटियर्स, वर्क विद इंटर्न्स. लॉकडाउन वॉज अ वेरी 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 प्रोडक्टिव पीरियड फॉर मी. सो आई वॉज ऑक्यूपाइड ऑल डे. आई एम बेस्ट वेन आई एम ऑक्यूपाइड. अगर कोई मुझे बोले ना वनिका रेस्ट कर लो, वनिका सो जाओ, या फिर वनिका रहने दो, तो आई बिकम वेरी अनहैप्पी. मतलब मैं रह सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं रह नहीं पाती, बस मैं थोड़ी अनहैप्पी हो जाती हूँ. एंड वाई बींग अनहैप्पी, वाई चूजिंग टू बी अनहैप्पी वैन यू कैन चूज टू बी हैप्पी. सो दैट इज वाई आई, एज आई सेड, आई एम एन ओवर डूअर, आई लव वर्क. उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, कई की बार आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है, कई की बार आपकी रिलेशनशिप्स अफेक्ट होती हैं, कई की बार आपको लगता है कि आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. पर कई बार क्या होता है कि वो ज़रूरी होता है आपके लिए करना, जस्ट टू बी इन योर ओन फेस, इन योर ओन मूड्स. तो हाँ,
True that. And if I talk about the संस्कारी गर्ल वीडियो ऑल्सो, तो ये आपकी लॉकडाउन की थॉट थी. सो यू यू क्रिएटेड द इंटायर स्क्रिप्ट ड्यूरिंग द लॉकडाउन ओनली.
यस यस
सो वट वॉज द बैक स्टोरी ऑफ इट? बिकॉज जो सामने आया है वो तो एकदम माइंड ब्लोइंग है, पूरा वायरल हो रहा है. बट लॉकडाउन फेज में वाई दिस एक्सपीरियंस व्हेन एवरीथिंग वॉज शट डाउन एंड सडनली ये संस्कारी गर्ल वाला मोड?
यार मेरे ना, मैं बॉम्बे गई थी 2018 में, और कॉलेज लाइफ का सबको सपना देखना होता है ना. मेरे स्कूल में दोस्त थे, पर मैंने स्कूल लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉय नहीं की थी. तो मैंने सोच लिया था कि कॉलेज में मैं बहुत अच्छे से इंजॉय करूंगी, मेरे दोस्त होंगे एकदम करण जौहर मूवी टाइप्स, आई विल हैव फ्रेंड्स, आई विल चिल विद देम, लाइक टू डाई फॉर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ इट. बट मेरा कॉलेज लाइफ तो एकदम ही वियर्ड हो गया था, बिकॉज आई वॉज इन अ वेरी डिफरेंट इन्वायरमेंट और मेरे को समझ नहीं आ रहा था. दो पहले के कॉलेज के 2 साल तो ये चीज़ समझने में ही लग गए, चीज़ फिगर आउट करने में ही लग गए. उसके साथ साथ कॉलेज में मेरी कोई खास सोशल लाइफ थी नहीं, तो पर मुझे 2 साल लगे थोड़ी थोड़ी सोशल लाइफ बनाने में, और मैंने सोचा था 3रे साल में तो मैं रॉकी कर दूंगी, और 3रे साल में हो गया लॉकडाउन, ऑनलाइन लेक्चर्स, तो मेरा सारा प्लान ही फेल हो गया. एंड वन डे आई वाज सिटिंग इन दिल्ली, ऐसे ही चल रहा था, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये मेरा लास्ट ईयर है कॉलेज का, एंड वी आर सिटिंग हियर, एंड हाउ डिड माय कॉलेज लाइफ गो? सो दैट इज व्हेन मैंने वो चीज़ पूरी याद की, एंड आई वाज जस्ट राइटिंग डाउन माय एक्सपीरियंस, एंड दैट इज हाउ संस्कारी गर्ल केम इन. आई वॉज मिसिंग कॉलेज एंड ऑल द पीपल, और तभी मैंने संस्कारी गर्ल लिखी थी.
And what was the reaction of your batchmate after it came out like? कैसे रिस्पॉन्स मिले उनसे?
यार दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी सपोर्टिव पीपल. मतलब जब वो ब्रूट इंडिया ने फीचर किया, उसके बाद तो मेरे सारे बैचमेट्स का, इवन टुडे वन ऑफ माय बैचमेट्स सेंट मी अ कांग्रेचुलेशंस, आता रहता है. सो दे आर वेरी सपोर्टिव. कई लोगों ने पूछा कि ये वाला आदमी कौन सा था, वनिका ये किसके बारे में बात कर रही थी, ये किसके बारे में बात कर रही थी, वो अलग बात है, दे नीड गॉसिप. उसके साथ साथ बट दे आर वेरी 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 सपोर्टिव, सो आई डोंट माइंड. आई जस्ट डोंट लाइक, दे आर वेरी सपोर्टिव. आई थिंक आई हैव गॉट द मोस्ट सपोर्टिव पीपल इन माई लाइफ, वेरी सपोर्टिव फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम माई फ्रेंड्स टू द पीपल हु आर नॉट इन माई लाइफ राइट नाउ, टू माई कॉलेज मेट्स, टू माई फैमिली, टू माई पापा, टू माई मम्मी, ऑल ऑफ दीज पीपल, दे आर वेरी सपोर्टिव.
That's amazing. And I just want to understand from you, you know, you are handling lots and lots of things right now. Ek student bhi ho, NGO bhi chala rahe ho, you are also traveling and you are also a storyteller. So which is the best phase of your life in this particular in all this aspect of it? And how do you handle so many things at the same time?
यार मैं हैंडल नहीं करती हूँ, मेरा जब जो मूड होता है ना, जब जो चीज़ करने की ज़रूरत होती है ना, मैं वो करती हूँ. जब मुझे कहानी लिखनी है, सो आई डोंट हैव टू बी अ स्टोरी टेलर, मुझे कहानी लिखनी होती है, जब वो थॉट आता है मैं बैठ के लिख लेती हूँ. वो 4 दिन में एक बार आए, 5 दिन में एक बार आए, 6 दिन में एक बार आए, तो मैं जब भी वो थॉट आता है, जब भी वो फेज आता है मेरा कहानी लिखने का, तो मैं कहानी लिखती हूँ. तब मैं ये नहीं सोचती कि यार क्या काम है, कैसा काम है. कहानी हर कोई नहीं लिख पाता है, एक कहानी मैं लिख पाती हूँ, एंड दैट इज़ वाई आई वैल्यू दैट इमोशन. जब ट्रैवल का होता है, मुझे पता है कि मैं एक जगह स्टेशन नहीं रह सकती, मुझे घूमना ज़रूरी है, मुझे लोगों से इंस्पिरेशन लेना ज़रूरी है, वो एक्सपीरियंसेस लेना ज़रूरी है, ये मेरा फ्यूल है. तो मैंने एक फिक्स कर रखा है, हर महीने का एक फेज वेयर आई एम गोइंग टू ट्रैवल. उससे पहले जो है मुझे सब सॉर्ट करके रखना है, जो भी मेरा काम है. एनजीओ भी जो है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल हु आर हेल्पिंग हेल्पिंग मी इन दिस. तो उन पे काफ़ी कुछ, सो इट्स लाइक व्हेन यू डू थिंग्स दैट यू लव, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, तुम रास्ता निकाल लेते हो. और इसमें से अगर बेस्ट चीज़ बतानी हो, तो यार ये सारे इतने कनेक्टेड हैं. जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, तो उसी से आप कहानियाँ लिखते हो, और जब आप कहानियाँ लिखते हो, तो आप वो कहानियाँ सुनाते हो, और उससे आप दूसरों के जीवन में इम्पैक्ट पड़ता है. सो इट्स लाइक अ सर्कल, आप सर्कल में से कोई एक चीज निकाल नहीं सकते, नहीं तो वो सर्कल इनकम्प्लीट हो जाएगा.
राइट, दैट्स सो ट्रू. एंड एज यू वर टेलिंग अबाउट द स्टोरी टेलिंग, और मैंने बोला भी था कि यू क्रैक द कोड ऑफ यू नो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. तो अगर इफ टुडे यू हैव टू एक्सप्लेन द 2018 वनिका की स्टोरी टेलिंग क्या होती है, सो व्हाट आर द सिंपल स्टेप्स यू विल टीच हर कि दिस इज द प्रोसीड्योर इन विच यू कैन फॉलो द स्टोरी टेलिंग, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग?
जो तेरा मन है ना वो कर, बस खत्म.
वाओ, वन सिंपल स्टेप.
वन सिंपल स्टेप, यू नो फेलियर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दी निटी ग्रिटीज ऑफ थिंग्स. कोई रास्ता, कोई 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 स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता जीवन में किसी भी चीज को सीखने का. तुम सीखते खुद के एक्सपीरियंसेस से ही हो. इन्फॉर्मेशन जो होती है ना तरुण, वो अबंडेंस में अवेलेबल है. हम बचपन से इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करते आ रहे हैं, पर कुछ भी चीज़ सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक्सपीरियंसेस. तो 2018 की जो मैंने कहा है, मैं उसको यही कहूँगी कि भाई तू जैसी जा रही है ना, बढ़िया जा रही है, बस अपने दिल की सुन.
एंड डू यू फेवर द रियलिटी ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, या यू ऑल्सो यूज द फिक्शन कैरेक्टर्स? मतलब जब जब आप कभी भी स्टोरी बना रहे हो, इमेजिनरी वर्ल्ड ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या जो रियलिटी में एक्सपीरियंस किया उसी को स्टोरी टेलिंग में डाल दो?
आप बेसिकली रियलिटी को ही फिक्शन में डालते हो. जो भी आप फेस करते हो, जो भी आप सुनते हो, जरूरी नहीं है आपके साथ हुआ हो सकता है किसी और के साथ हुआ हो. तो आप कभी कुछ फिक्शन लिख ही नहीं सकते हो, आप कभी कुछ इमेजिन कर ही नहीं सकते हो. इमेजिनेशन इज जस्ट योर इंटरप्रेटेड रियलिटी. आपने किसी से सुना होगा, आपने किसी के साथ अनुभव किया होगा, आपने कहीं देखा होगा, आपने आपने बस उसको उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व किया है, और तभी वो आपकी इमेजिनेशन बनी है. तो मेरा फिक्शन भी रियलिटी है, मेरा रियलिटी भी फिक्शन है, और यही एक खास बात है एक कहानीकार की, कि मैं कभी बता नहीं सकती कि मैं क्या लिख रही हूँ, रियलिटी की फिक्शन.
Wow. And do you get this compliment a lot? Like at such a young age, how do you get so mature about life? Because you know, if we talk about things, the inspiration of your, the motivation of yours, बातों से लगता है कि like you are at such a space कि जहाँ आपने लाइफ पूरी तरीके से कम्प्लीटली जी ली है और या फिर यू आर इन
नहीं
द
नहीं मुझे लंबा जीना है
बेस्ट.
प्लीज मुझे लंबा जीना है, ऐसे मत बोलो.
एग्जैक्टली.
आई थिंक द वन थिंग दैट आई हैव डन इन माय लाइफ इज मैंने लिखा बहुत है. और जो राइटर्स होते हैं ना, वो अपनी उम्र से ज्यादा ही बात करते हैं, क्योंकि वो हर चीज को लिखते हैं. वो हर चीज को बोलते हैं ना कि अगर आप सांस ले रहे हो और आप उस सांस को महसूस कर रहे हो, एक एक सेकेंड रुक के उसको उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. तो व्हेन यू राइट यू वैल्यू थिंग्स मोर.
राइट. एंड दैट्स सो ट्रू वनिका, बिकॉज पेनिंग डाउन थिंग एंड अपने फीलिंग्स को शेयर करना इज टोटली अ वेरी यू नो इंस्पायरिंग थिंग फॉर यू, एंड यू ऑल्सो शेयर दैट पर्टिकुलर थिंग विद अदर्स एंड वो भी इंस्पायर होते हैं उस चीज़ से, एंड यू आर डूइंग अमेजिंग इन दिस स्पेस. एक नॉर्मल प्रॉब्लम है एंड आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा फेस होती है, विच इज नेगेटिविटी, एंड इट्स नॉट इन द सोसाइटी, इट्स ऑल्सो ऑन द सोशल मीडिया, राइट? Because whenever we are opening it, you will get such kind of negativity from the world, from the trollers, because social media एक ऐसा स्पेस है जो आपको फेम भी देता है तो वो आपको ट्रोल भी करवाता है कहीं ना कहीं. सो बींग अ कंटेंट क्रिएटर, बींग अ स्टोरी टेलर, हाउ डू यू मैनेज दैट नेगेटिविटी और अपने कंटेंट को उसको थोड़ा दूर रखने की कोशिश करते हो या फिर उसको मिक्स करके पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हो?
यार पहली चीज, देर आर डेज व्हेन आई गेट अफेक्टेड बाय इट. मैं हर दिन, मैं बहुत बार लो हो जाती हूँ, मैं बहुत बार परेशान हो जाती हूँ. कई बार बुरा लगता है, कई बार बहुत बुरा लगता है. तो हाँ, वैसे दिन भी होते हैं. पर अगर मैं ज़्यादातर दिन की बात करूँ, तो मैं एक चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि आई परफॉर्म, आई राइट, आई क्रिएट कॉन्टेंट फॉर माई ओन सेल्फ. मैं इंस्टाग्राम पे हर दिन पोस्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि ज़रूरी है. हाँ, ज़रूरी भी है, पर मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर मैं दिन में कुछ लिख रही हूँ या फिर दिन में कुछ क्यूरेट कर रही हूँ, तो मेरा दिन चलता रहता है. इट्स अ पार्ट ऑफ माई डे, इट्स समथिंग दैट आई डू फॉर माई सेल्फ. तो सबसे पहले तो अगर मैं खुद के लिए कर रही हूँ, तो किसी और से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर फिर भी फर्क पड़ता है कई दिनों पर. दूसरी चीज़, अगर मैं अपने YouTube वीडियोस खोलती हूँ या अपने Instagram पे देखती हूँ, तो बहुत सारे लोग ना बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत सारी. सब लोग इतना सारा प्यार देते हैं, इतना इतनी तारीफ करते हैं. तो अगर मैं उन तारीफों की वजह से चने के झाड़ पे नहीं चढ़ती, है ना, मतलब मैं उसको बहुत सीरियसली लेकर, ओ वनिका यू आर अ सुपरस्टार, ऐसे नहीं हो जाती, तो मैं किसी के नेगेटिव कमेंट्स देखकर डाउन भी क्यों हूँ? अगर हम अच्छाई से एकदम टॉप पे नहीं पहुंचते, अगर हम उसको मॉडरेटली लेते हैं, तो हम बुराई को भी तो इतना डाउन में ना ले, उसको भी मॉडरेटली समझें. सो आई ट्राई टू बैलेंस थिंग आउट. ये क्या के कि इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक दो तो होते ही हैं. जब उनकी बातों को तू इतना सीरियसली लेके खुद को सेल्फ डाउट करना नहीं छोड़ती, तो दूसरों की बातों को लेके तू खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज क्यों कर रही है? सिंपल.
Wow, it is very well explained actually. And so now I would like to ask you, like, where do you see yourself in 5 years down the line? So what is your goal?
गोल कुछ नहीं है. सिंपल सी बात ये है कि आई जस्ट वॉन्ट टू मेक माई फैमिली प्राउड. वो खुश रहे मेरे से, मैं उनके साथ खुश रहूं. एंड जो भी है ना, आई जस्ट वॉन्ट टू, एज आई सेड, जो मैंने 2018 की वनिका को कहा, वो मैं 2025 की वनिका को कहूंगी कि प्लीज जस्ट फॉलो योर हार्ट. जो करना वो दिल से कर, जो दिल कह रहा है वो करो. बिकॉज लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि लाइफ एक ही है. सो द वर्स्ट थिंग दैट दे कैन डू विद देयर लाइफ इज कॉम्प्रोमाइज इन एनी वेज. कोई भी इच्छा को मारना किसी भी रीजन से, कई बार वो अपने आप ही हो जाती है, बिकॉज सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ यूनिवर्स. बट अगर हमारे हाथ में है ना, तो अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, अपनी खुशी को कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. बिकॉज यू जस्ट हैव वन लाइफ एंड ऑल यू हैव टू डू इज कीप योर सेल्फ हैप्पी.
That's so true, and thank you so much for keeping each and everything in a candid manner and explaining to us in a very simple way. I'm definitely, I'm very sure that, you know, each of the story which you have shared, each of the facts which you have shared will be, you know, relate to some or the other person. But last recommendation for all those people who are, you know, struggling in the life but want some kind of motivation, jaise aapki start bhi jo hui thi, wo ek motivation video ke wajah se hui thi. So if I tell you to describe one motivation statement from your side for all those who are struggling in life and want to, you know, get that boost for themselves, so what it would be?
It would be, you don't like clean things when your life isn't messy.
True, yeah.
So, bas karte jao. Matlab the universe is just testing your faith. Sab theek hoga. You just have to keep going. Meri ek story ki line hai, usme kaha hai maine, ki sab kuch kharab na sab kuch theek hone ke liye hota hai. So if you're having your bad days, that is just building on your good days. So just keep going. Everything in life will balance out, the good, the bad, everything. So don't care about the good too much, don't care about the bad too much. Just enjoy the process and go with the flow.
Wow. So ending this podcast with good note, you don't consider yourself as a poet, you are more of a storyteller. But if I request you to tell one poem of yours, so which one you will prefer to, you know, share with our audience?
Main koi poem nahi likhti hu, meri stories bahut lambi hoti hai. You can check out my work on YouTube and on Instagram.
Definitely, yeah.
Dekh lo. abhi aisi koi poem hai nahi, but okay. Jaise ki maine kuch lines beech mein kahi, ho jaoge agar tum unki tarah to rahega nahi koi tumhari tarah. तो किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम जो हो जैसे हो एकदम परफेक्ट हो.
Oh wow, that's so amazing, Manika. Thank you so much for taking out time for this podcast. And I would request everyone to check out the Instagram handle of Manika, and you can also check out her videos on YouTube. It's amazing, and you are going to get some amazing stories of her. Well, once again, thank you so much for taking out time for this podcast.
Thank you, Tarun. Thank you so much for having me here, and all those who are listening. Thank you for being so patient and just being with us. Thank you.
Well, that's all from today's episode. I hope you liked it. In case if you have any suggestion or feedback, you can reach out to me at various social media handles. I'm adding the link in the description. Until next time, stay safe and stay tuned.